پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے پروگرام اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. پاکستان میں نئی حکومت کسی نئے بلدیاتی نظام کے قیام کی بات کر رہی ہے. یہ نظام کس طرح نیا ہوگا, اس بارے میں نئی حکومت غور و فکر کے مراحل میں ہے. تو جب تک یہ معلومات تفصیل سے سامنے آئیں اور ہم ان پر بات کریں, ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے سننے والوں کو امریکہ کے بلدیاتی نظام کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں. تو آج کے پروگرام میں یہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے کہانی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر پیرس کے پہلے اور امریکی تاریخ میں پہلی بار تین مسلسل مدت کے لیے میئر کے منصب پر فائز رہنے والے ایک پاکستانی امریکی کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ارجمن ہاشمی کی, جنہوں نے شہر کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ ان کے شہر کی خرابیوں کو بھی دور کر کے ان کے دل کچھ اس طرح جیتے کہ انہوں نے انہیں مسلسل تین بار اپنا میئر منتخب کیا اور 6 سال تک پیرس شہر کے میئر کے طور پر خدمات کی انجام دہی کے بعد انہیں شہر کی اقتصادی ترقیاتی کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا. ان عہدوں پر رہتے ہوئے انہوں نے شہر کو ترقی کی کس منزل تک پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا. یہ سب کچھ ہم پیش کر رہی ہیں پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا براہ راست لنک ہے facebook.com/voaurdu. تو کہانی شروع کرتے ہیں دل کے اور ٹیکسس کے شہر پیرس کے ایک ماہر چاراگر ڈاکٹر ارجمن ہاشمی کی, جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر ٹیکسس کے شہر پیرس سے. السلام علیکم ڈاکٹر ارجمن ہاشمی صاحب.
السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟
میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ لنچ آور ہے اور اس میں آپ نے ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے لنچ کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کیا یا جو کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ شریک ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے پہ ٹیلی فون پہ, اور بالکل اینی ٹائم موسٹ ویلکم.
بہت شکریہ. تو سنائیے سب سے پہلے کہانی ہمارے سننے والوں کو کہ کیسے پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے, متحدہ عرب امارات میں پڑھنے بڑھنے والے, امریکہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے دل کے ایک ماہر ڈاکٹر بننے والے ایک پاکستانی امریکی نے کیوں اور کیسے اپنے شہر کے لوگوں کے دلوں کے مسائل حل کرتے کرتے ان کے شہری مسائل حل کرنے کو اپنا ایک قسم کا سیکنڈ پروفیشن بنا لیا, اور کیسے اس نے اپنے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ساتھ میئر کے اہم انتظامی عہدے کی ذمہ داریاں 6 سال تک کچھ اس خوبی سے نبھائیں کہ انہیں اس کے بعد 3 سال کے لیے شہر کی اقتصادی ترقیاتی کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا.
دیکھیں اس کی کئی وجوہات تھیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو پبلک سروس ہے, سب سے میں نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک سروس یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزیں کرے اپنے شہر میں جس سے کہ سارے شہریوں کا فائدہ ہو. ایز اے ڈاکٹر آبویسلی آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ انڈیویجول فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک کمیونٹی کا فائدہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی سروس یہ ہے کہ آپ پبلک سروس کریں, اور امریکہ میں سب سے اچھی پبلک سروس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اور یہ بات میں صرف امریکہ کے لیے نہیں کہوں گا, یہ میں ساری دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں عام آدمی کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کی لوکل گورنمنٹ سے پڑتا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ فارن پالیسی بناتی ہے اور بہت ساری چیزیں کرتی ہے, ان کے اپنی کام ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر جتنا اثر آپ کی لوکل گورنمنٹ سے ہوتا ہے اتنا فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ہوتا.
تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو مقامی حکومتوں کا یا بلدیاتی حکومتی جو نظام ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, اور یہ پاکستان کے بلدیاتی نظام سے کس طرح مختلف اور کس طرح اس کے مماثلت رکھتا ہے, اس سے یا ملتا جلتا ہے؟
دیکھیں مجھے پہلے تو یہ کہ مجھے پاکستان پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے بلدیاتی نظام پہ پاکستان کی, لیکن جتنا مجھے اندازہ ہے اس کے حساب سے بتاؤں گا. لیکن امریکہ جس پہ کہ مجھے جس کے بارے میں پتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں. کئی فارمز آف گورنمنٹ ہوتی ہیں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی, لیکن بیسک بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں. یہاں پہ لوکل باڈیز سلیکٹ کرتی ہیں کاؤنسل اور لوکل باڈیز سلیکٹ کرتی ہیں میئر. میئر کی رسپانسبلٹی جو ہے, دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں تو میئر کی میجر رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, اور لوکل گورنمنٹ کی میجر رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, جو کہ 3 چیزوں میں آ سکتی ہے, ہیلتھ, سیفٹی اینڈ کوالٹی آف لائف.
अच्छा
और इन तीन बुनियादी चीजों के अंदर आप सारी चीजें डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक ये है कि जो कि मैं एक डेफिनेट पाकिस्तान से मुख्तलिफ चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो ऐसे मेयर होता है वो हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जितने भी लोकल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं विच इंक्लूड्स द पुलिस डिपार्टमेंट, द फायर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यू नो जो भी शहर के डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मेयर के अंदर आते हैं।
अच्छा।
अब दो तरह के मेयर होते हैं यहाँ पे और ये अपनी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इलेक्ट करते हैं अपने मेयर को। एक वो होता है मेयर जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और सारी लीगल ड्यूटीज अपने पास रखता है। दूसरा वो मेयर होता है जो कि अपने पास ये सारी चीजें रखता है लेकिन उसके अलावा उसके नीचे होता है नॉन इलेक्टेड पर्सन जो कि वो हायर करता है, जो कि बाकी डे टू डे काम जितने हो रहे होते हैं बिसाइड्स द मेयर वो उन कामों को हेड करता है।
अच्छा।
तो ये दो बेसिक तरीके होते हैं और ये हर एक शहर के ऊपर अपना मुनासिब समझा जाता है। जो अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनके कुछ शहरों में ऐसा है जिसमें कि सिर्फ मेयर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कोई उसके नीचे नहीं होता है, हर डिपार्टमेंट हेड उसके नीचे होता है। बाद शहरों में ये होता है कि मेयर के नीचे सिटी मैनेजर होता है और सिटी मैनेजर फिर सारी मेयर और काउंसिल की जितनी चीजें हैं वो कंडक्ट करवाता है।
अच्छा, तो ये जो मेयर का इंतखाब आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स करते, तो बराए रास्त वोटिंग नहीं होती मेयर के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल
आम लोग वोटिंग करते हैं। आम लोग वोटिंग करते हैं?
बिल्कुल आम लोग वोटिंग करते हैं, उसी से आप इलेक्ट होते हैं।
अच्छा, तो
बस ये होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी पार्टीज हैं, यू नो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है
जी जी।
और मैं तो रिपब्लिकन हूँ वैसे, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो यहाँ पे होते हैं, एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन पार्टी की बेसिस पे नहीं होते हैं।
अच्छा अच्छा, लेकिन तो पार्टी के लोग जो हैं वो इलेक्शन तो जरूर लड़ सकते हैं लेकिन उनकी बुनियाद ये नहीं होती। तो क्या बुनियाद क्या होती
होती? मसलन ये कि जिस वक्त मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस वक्त सबको पता है कि मैं रिपब्लिकन हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने कि मुझे वोट डाला है बावजूद इसके कि वो डेमोक्रेट्स हैं। तो ये जो है एक कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है बनिस्बत इसके कि आप किस पार्टी से हैं।
अच्छा, तो आपने जो पहला इंतखाब जो आपने जीता था 2011 की जुलाई में गालिबन जीता था और उसके फौरन बाद 11 सितंबर का वाकया पेश आया था, तो ऐसे वक्त में आपने अपने शहर का ये इंतजाम संभाला था, तो कैसे लोगों ने उस वक्त आपको एज मेयर देखा और क्या आपने फील किया कि लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं, उनको क्या खदशात लाहिक हुए थे आपको एक पाकिस्तानी अमरीकी को अपने मेयर के तौर पर देखते हुए?
जी हाँ, तो देखिए बात ये थी कि पहली बात तो ये कि मैं शहर में बहुत ज्यादा दिन से नहीं था। मैं शहर में मुझे आए हुए तकरीबन 5 साल हुए थे जिस वक्त मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था, तो थोड़ा सा नाम रिकग्निशन तो था और नाम रिकग्निशन जो था वो ऑब्वियसली इस बेसिस पे था कि कार्डियोलॉजिस्ट है और आदमी पेशेंट देखता है, तो नाम लोगों को पता था, ये नहीं था कि नाम पता नहीं था लोगों को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी, एक डॉक्टर के पास जाने में और एक आदमी को वोट देने में लोगों की ओपिनियंस बड़ी चेंज होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है बहुत ओपन माइंडेड थे। ये जरूर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं क्यों इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों की तरफ से ये नहीं हुआ मुझे कि ये भाई बहुत मुसलमान आदमी है या ये है या वो है। ये जरूर हुआ था कि जो मेरा ऑपोजिशन था उन्होंने इस बात को जरूर निकाला था कि भाई ये मुसलमान है और इनकी इख्तार हमसे फर्क होती है वगैरह वगैरह, जो भी उनकी टैक्टिक्स थी उन्होंने इस्तेमाल की थी, लेकिन ऑब्वियसली वो टैक्टिक्स नहीं काम किया क्योंकि मैं 68% वोट से जीता था सिटी में पहले इलेक्शन में। तो
और दूसरा इलेक्शन फिर आपने बिला मुकाबला आप मुंतखब हो गए थे।
दूसरा इलेक्शन में बिला मुकाबला
और तीसरा आपने बड़ी भारी
जी हाँ तीसरा बार ये फिर से जीता था।
अच्छा, और तो आपको ये एजाज हासिल हुआ कि पहली बार आप ऐसे पाकिस्तानी और मुसलमान अमरीकी हैं जिन्हें मुसलसल 3 बार मेयर मुंतखब होने का एजाज हासिल हुआ, तो बड़ी बात है। लेकिन चौथी बार आप क्या आपने इंतखाब नहीं लड़ा या आप चाहते नहीं थे या कोई लीगल
ये हमारे पास टर्म लिमिट्स हैं। टर्म लिमिट्स का मतलब ये होता है कि एक टर्म जो मेयर की होती है वो 2 साल की होती है
जी, जी.
तो आप 3 कंजर्वेटिव इलेक्शंस लड़ सकते हैं, उसके बाद में यू हैव टू स्टेप डाउन. उसके बाद आप मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते. आपको या तो एक दफा ब्रेक लेना पड़ता है 2 साल का, या अगर आप ब्रेक ना लें तो फिर आप कोई और इलेक्शन लड़ें. लेकिन ये कि आप उसी पोजीशन के लिए 6 साल मुस्तकिल रहने के बाद में आपको ब्रेक लेना जरूरी है.
तो आपने आजकल ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन उस ब्रेक के दौरान भी आपने आपको मुंतखब कर लिया गया मकामी कौंसिल में, तो शहर की इक्तिसादी तरक्याती कौंसिल के आप मेंबर हैं.
दूसरा, मेरा इरादा अगले इलेक्शन में जो है वो ये है कि मैं दोबारा मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ. मैं इससे बड़ी पोजीशन पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ. कॉन्फिडेंस भी आदमी को आ जाता है. यू नो, पहले मैं बिल्कुल नया था इस चीज में, मैंने कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था. अब मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी किया है, फिर नाम की जरा शोहरत भी हुई है, काम बहुत किया था, तो उसके नतीजे में
अच्छा
जरा बेहतर पोजीशन है.
बड़े इलेक्शन लड़ेंगे. और लेकिन अब ये बताइए कि एक मेयर की आपने कुछ जिम्मेदारियों का तो जिक्र किया, लेकिन आप तो एक डॉक्टर भी हैं. आपने अपने आप वो प्रोफेशन भी नहीं छोड़ा, और आपने मेयर की ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी संभाली. एक तो पहले ये बताइए कि क्या इसमें कोई तनख्वाह वगैरह होती है कि ये मुफ्त काम करना पड़ता है?
जी हाँ. तो अगेन इसके 2 तरीके, पहले जहाँ तक तनख्वाह का ताल्लुक है, 2 तरीके होते हैं. मेयर की पोजीशन पेड भी होती है और मेयर की पोजीशन अनपेड भी होती है.
अच्छा.
लेकिन मैंने अनपेड पोजीशन पे काम किया, मैं पेड नहीं.
अच्छा.
मैं खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास फुल टाइम जॉब है अपना डॉक्टरी का, तो मुझे मेयर की सैलरी की जरूरत नहीं है.
लेकिन वो फुल टाइम जो आपकी जॉब है उसको फुल टाइम आप कर तो नहीं पा रहे, तो कैसे आप एडजस्ट करते हैं दोनों?
एक्चुअली एक जो चीज आपने जब पहला सवाल पूछा था, उस वक्त एक सवाल जो लोगों ने जरूर पूछा था, पर्टिकुलरली बहुत सारे पेशेंट्स ने ये सवाल मुझसे पूछा था कि भाई हम तो तुम्हारे पेशेंट हैं, अब तुम्हें जब मेयर का काम करना पड़ेगा तो तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम होगा कि नहीं होगा. लेकिन जो बड़ी अच्छी बात हुई, एक तो ये कि थोड़ा सा मुझे अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करना पड़ा. मैं जल्दी उठता था, काम जल्दी शुरू करता था मेयर का. लेकिन 2-3 चीजों ने बड़ा हेल्प किया. एक तो हमारा सिटी हॉल ने बड़ा कोऑपरेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी डॉक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी सूरत पे मैं कम नहीं करना चाहता. इसलिए नहीं कि कोई पैसे कमाने की वजह से नहीं, बल्कि जहां पे आदमी की जिंदगी का सवाल आ जाए तो वहां पे हर चीज इंतजार कर सकती है. जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब इस बात को सारे शहर ने भी फील किया, और लोग जो मुझसे मेयर से मिलने आते थे वो इस बात का ख्याल रख के आते थे कि वो मेरे डॉक्टरी आवर्स में इंटरफियर ना करें. अच्छा, कभी कभार होती थी ऐसी बात कि इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन आए जिसमें कि आपको मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट आ रही हो तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़े, और वो कर लेते थे. लेकिन हमने दिन को ऐसे डिवाइड किया था दफ्तर में कि एक खास टाइम हम मेयर का टाइम रखते थे, फिर उसके बीच में हम पेशेंट्स का टाइम रखते थे, फिर मेयर का टाइम रखते थे, फिर पेशेंट्स का रखते थे, और फिर एंड ऑफ द डे 4 बजे शाम के बाद में हमारा पूरा टाइम जो होता था वो मेयर की ड्यूटीज पे.
तो लेकिन आपका जो 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 आपका ऑफिस होता था वही आपका क्लिनिक भी होता था?
जी हाँ. तो हमने ये किया था कि एक मेयर का दफ्तर तो सिटी हॉल में था, जिसमें अगर कोई फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह करनी होती थी तो वहां करते थे. लेकिन ये कि मेरे एक सेक्रेटरी जो थी मेरी, वो मेयर की सेक्रेटरी और डॉक्टर की सेक्रेटरी को कंबाइन करके अपना जो डॉक्टरी ऑफिस है उसमें रखा था, और मैंने फिर एक मेयर का ऑफिस अपने डॉक्टर ऑफिस के साथ में बना लिया था, ताकि अगर कोई अर्जेंट जरूरत की चीजें हों जिसमें कि मेयर की जरूरत हो तो वहीं पर मेरा दफ्तर होता था.
अच्छा.
तो मुझे बार बार सिटी हॉल नहीं जाना पड़ता था.
अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये आपने एडजस्ट किया, तो और ये भी आपने अल्टरनेट कर लिया, और लेकिन जाहिर है आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके मरीज थे, कि अगर मरीज है तो फिर थोड़ी देर के लिए आप उसी को प्रेफरेंस देते थे और मेयरशिप को छोड़. अच्छा, अब हमारे सुनने वालों को, लेकिन नहीं, हमारा ख्याल है कि एक ब्रेक ले लेते, तो ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे कि शहर को चलाने के लिए आमदनी के जराए क्या होते हैं किसी शहर को के पास, और वो कैसे हासिल होते हैं, और फिर उनको खर्च कैसे किया जाता है. तो पहले एक ब्रेक.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में. पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए. दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमाया जिंदगी में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एक मुमताज बल्कि सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले डॉक्टर हैं दिल के, और इस वक्त अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर पेरिस में मौजूद हैं, और वो पेरिस के पहले और अमरीकी तारीख में पहली बार 3 मुसलसल मुद्दत के लिए मेयर के मनसब पर फायज रहने वाले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ वो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं मेयरशिप से क्योंकि वो 6 साल की मुदत पूरी कर चुके हैं और अब वो शहर की इक्तिसादी तरक्याती काउंसिल के रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अर्जुमन हाशमी साहब, डॉक्टर अर्जुमन हाशमी साहब, कुछ बताइए कि किसी भी शहर को चलाने के लिए अमेरिका में जो मकामी हुकूमत का सिस्टम है उसमें फंड्स कहाँ से हासिल होते हैं, और फिर उन फंड्स को की तरजीहात कैसे मुतय्यन होती हैं, कौन करता है, और आपके पास जो आपका अपना शहर है उसमें आपका क्या सिस्टम है?
अच्छा, तो आम तौर पे जितने भी शहर हैं यहाँ पे उनका मोर और लेस अकाउंटिंग और बजटिंग का सिस्टम जो है वो मोर और लेस वही होता है। और उस बजटिंग सिस्टम के अंदर ये होता है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, लोकल गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं वो हम खुद कलेक्ट करते हैं और खुद यूज करते हैं। कुछ हमें ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ज्यादातर पैसे जो हमारी इनकम होती है वो लोकल ही होती है।
कैसे होती है लोकली कैसे होती है?
तो लोकल इनकम के कई जराए होते हैं। पहला जरिया जो होता है वो ये होता है कि आप टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है और अनवाव अकसाम के जो लोकल टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो होते हैं, वो पहली सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद में हम जितनी भी दफ्तरी कार्रवाइयां होती हैं, मसलन परमिटिंग फीस है, वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में अगर फिर आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी सिटी में पानी है, तो पानी का खर्चा जो है वो पूरा सिटी के पास आता है।
अच्छा,
जितने भी पानी के बिल, जितने भी लोग पानी खर्च करते हैं वो बिल हमारे पास आता है। इसी तरह सिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मसलन वाटर सप्लाई करती है, सुअर सप्लाई करती है, स्ट्रीट क्लीनिंग सप्लाई करती है, इन सब चीजों के पैसे चार्ज किए जाते हैं रेजिडेंट्स को।
अच्छा,
तो वो पैसे सबके सब सिटी के पास आते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर ये होता है कि जितना भी सेल्स टैक्स स्टेट कलेक्ट करती है उसका एक खास परसेंटेज जो है वो हमें फिर मिलता है। तो ये सारे एक्यूमुलेट हो आके काफी पैसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बजटिंग करनी होती है, और फिर जो रोल होता है मेयर का और काउंसिल का वो ये होता है कि बजट बनाया जाता है और जो जो चीजें सिटी के लिए जरूरत है आज के लिए, अगले साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए वो एलोकेट की जाती हैं।
अच्छा,
अच्छा, फिर इसी तरह से सिटी का हर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट वाइज बजट बनता है। मसलन पुलिस का अपना बजट बनता है, लेकिन जो बेसिक बजट जो बनाता है उसका मैं आपको ये बात जरूर एम्फसाइज करूंगा कि मेजर बजट तो हम लोग अप्रूव करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बजट के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया जाता। मसलन हम पुलिस चीफ से कहेंगे कि तुम अपना बजट बनाओ, उसके अंदर वो अपनी सारी चीजें लिखेगा, जो उसकी सैलरीज वगैरह हैं, जो लोगों के बेनिफिट्स हैं वो, उसके अलावा अगर उनको नई पुलिस की गाड़ियां खरीदनी है तो वो उसके लिखेगा, या उसके लिए जो भी पुलिस का सामान लेना है उसे वो सबमिट करेगा हमको। इसी तरह फायर डिपार्टमेंट हमें अपनी सैलरी सबमिट करेगा, क्या क्या नए फायर ट्रक्स चाहिए या क्या क्या सबमिट करेगा। जब हम पूरे डिपार्टमेंट से ये मिल जाती हैं चीजें तो फिर हम उनमें से प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें इस साल के लिए जरूरत है, क्या क्या चीजें अगले साल के लिए जरूरत है, और फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मसलन मैं आपको एक फायर ट्रक की एग्जांपल देता हूँ, एक फायर ट्रक की कॉस्ट तकरीबन $1 million होती है। अब उस $1 million के अंदर आपको ये ख्याल रखना होता है कि आपने $1 million तो खर्च किए, लेकिन अगर फायर ट्रक की लाइफ 5 साल है तो हम फिर उसको ऐसा करते हैं कि हम इसी तरह से पैसे एलोकेट करना शुरू करते हैं बजट में कि जब 5 साल आएंगे और उस ट्रक की जरूरत नहीं होगी और आपको नया ट्रक लेना होगा तो बजट इस तरह से किया जाए कि 5 साल बाद आपके पास उतने पैसे हों कि आप नया ट्रक खरीद सकें।
वाह, तो इसके लिए जो आपका अमला होता है वो जाहिर है कि वो आपने कहा एक तो आप हायर करते हैं ना, जो प्लानिंग करता है और जो उसको चलाता है।
जी हाँ,
तो बाकी अमला
तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को दिया जाता है पहले टास्क। वो जब डिपार्टमेंट हेड जो है, मसलन पुलिस का चीफ जो है, वो लेके आएगा अपना बजट, उसके बाद में फाइनेंस डायरेक्टर देखेगा उस बजट को कि जो चीजें लिखी हैं, जो नंबर्स हैं, वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, पिछले सालों से कंपेयर करेगा और अगले प्रोजेक्शन से कंपेयर करेगा, उसके बाद में वो बजट फिर हम काउंसिल को और मेयर को सबमिट करेगा, उस पर हम लोगों की फिर हमारी अथॉरिटी आती है कि हम उसे अप्रूव करें या ना अप्रूव करें, या उनमें से कुछ चीजें अप्रूव करें या कुछ चीजें ना अप्रूव करें।
ठीक, तो ये जाहिर है कि आपके पास माहिरीन भी होते हैं ना आपके अमले में।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हर शोबे के माहिरीन होते हैं जो उसको जज करने के बाद एक बाकायदा फैसला करते हैं कि क्या क्या कुछ करना चाहिए, और तरजीहात मुतय्यन करते हैं, फिर उस पर अमल दरामद के लिए फिर आप उसको आपका एक आप हायर करते हैं एक शख्स को जो कि इन सबको करता है। लेकिन अभी आपने टास्क की बात की, तो क्या यहाँ पर कोई टास्क फोर्सेज बनती हैं? आजकल पाकिस्तान में बहुत टास्क फोर्सेज का शोर है कि हर काम के लिए एक टास्क फोर्स रखी जाती
हमारे पास कोई टास्क फोर्स नहीं बनती, जो टास्क फोर्स है वो बनी हुई है ऑलरेडी, रोजाना नई टास्क फोर्स नहीं बनाई जाती है यहाँ पे, हर एक चीज के लिए ऑलरेडी चीजें पहले से प्री डिटरमिंड चीजें हैं, अनलेस के कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो फिर उसके लिए और उसके अंदर आपको कई जगह से ओपिनियंस लेनी पड़े तो उसको आप बना सकते हैं टास्क फोर्स, लेकिन आमतौर पर वो जो टास्क फोर्स बनाई जाती है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई जाती है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ शहर के, मसलन अगर आपको एक टास्क फोर्स बनानी है जिसमें आपको बैंकर से ओपिनियन लेनी है, इंजीनियर से ओपिनियन लेनी है, या आम रेजिडेंट से ओपिनियन लेनी है, तो उस तरह से टास्क फोर्स बनाई जाती है, लेकिन सिटी की डे टू डे रनिंग के लिए हम लोग टास्क फोर्स
नहीं बनती। ठीक है, अच्छा ये तो हुई ना टास्क फोर्स की बात। एक और चीज जो जाहिर है कि करप्शन की बात बहुत होती है, क्या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि इससे पहले हम आपसे ये पूछें कि जो आपके शहर के जो पेरिस है उसके बड़े बड़े मसाइल क्या वही हैं जो कि दूसरे शहरों के, या कुछ इनफरादी तौर पर आपके शहर के अलग से मसाइल हैं जिनको आपने हल किया, और दूसरे ये कि जो मसाइल को मेयर तक पहुंचाने का जरिया क्या होता है, आम शहरी खुद पहुंचते हैं या कोई और जरिया होता है?
हाँ, तो अब मैं आपको इसकी बताऊं, जो कुछ मेरी सक्सेस भी जो हुई है उसकी भी रीजन इसके अंदर आ जाएगी। एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे ये शुरू किया था, पहले जो था मेयर वॉज नॉट एक्सेसिबल, उसके साथ होता ये था कि मेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, लेकिन ये कि मेयर तक आम आदमी की पहुंच जरा मुश्किल होती थी। तो मैंने पहला काम ये किया था कि मैंने उस पहुंच को बहुत आसान कर दिया था, मसलन ये कि हर बुध के दिन शाम में 5 बजे से मेरा दफ्तर खुला होता था कि कोई भी शहर का आदमी आके किसी की किस्म की कंप्लेंट हो या काम हो जो कि वो डायरेक्टली बात करना चाहता हो मेयर से, तो उसके लिए दफ्तर खोला जाता था। उसमें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, आप आके जो चाहे डिस्कस करना चाहे वो डिस्कस कर सकते थे। अब उससे मुझे भी बड़ा फायदा हुआ और लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ। मुझे ये बड़ा फायदा हुआ कि मुझे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे शहर में, उनके बारे में मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई।
लेकिन टाउन हॉल भी तो होते, टाउन हॉल्स का सिस्टम भी है कुछ शहरों में?
बिल्कुल, नहीं, टाउन हॉल हमारे पास भी है, लेकिन बाज चीजें ऐसी होती हैं जो कि आदमी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, मसलन टाउन हॉल के अंदर आदमी आमतौर पर कंफर्टेबल फील नहीं करता, अगर किसी पुलिस के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है।
अच्छा,
तो लोग, पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गोइंग टू अ टाउन हॉल एंड कंप्लेनिंग।
ठीक है, लेकिन टाउन हॉल में, हाँ, लेकिन टाउन हॉल में जो है वो बड़े बड़े मसाइल, जैसे कि वो जिसमें कोई जाति मसला ना हो और किसी की शिकायत ना हो, तो ये आपने एक सिस्टम बना लिया, तो उसकी मदद से फिर आपको पता लग जाता है कि शहर में क्या क्या मसाइल हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए फिर आप गौर करते हैं और आपका अमला आपके साथ होता है जो इस पर गौर करता है। तो अब मैंने बात करूंगी कि करप्शन की, पाकिस्तान में आजकल बहुत जिक्र हो रहा है करप्शन का कि हर शोबे में करप्शन है, क्या अमेरिका में भी हुकूमतों के कामों में कुछ करप्शन का इम्कान होता है, और अगर होता है तो किस तरह, और क्या आपके शोबे में कभी करप्शन के कुछ वाकयात पेश आए?
जी, तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि करप्शन पहले तो डिफाइन करने की जरूरत है कि करप्शन क्या है। हमारे पास जिस चीज को हम करप्शन कहते हैं वो 3 चीजों में आता है, फ्रॉड, वेस्ट एंड अब्यूज। اچھا یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کرپشن میں آتی ہیں. فراڈ تو آبویسلی سیلف ایکسپلینیٹوری ہے کہ آپ اگر بےمانی کریں گے تو وہ فراڈ ہے.
بالکل.
ویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگوں کے پیسے ہیں, پبلک فنڈس ہیں, اور آپ ان کو ان صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ کو جانا ہے یہاں سے کسی میٹنگ میں اور آپ بجائے اکانومی کلاس میں جانے کے فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں, تو دیٹ از ویسٹفل اسپینڈنگ.
اچھا
ٹھیک ہے نا. تو ویدر اٹ از فراڈ, ویدر اٹ از ویسٹ آف پبلک فنڈز اور ابیوز. اور ابیوز کیا ہوگی کہ جس چیز پہ جو چیز آپ $10 کی کروا سکتے ہیں آپ اسے $20 کی کروا رہے ہیں, واٹ ایور دا ریزن مائٹ بی. ٹھیک ہے. تو فراڈ, ویسٹ اور ابیوز تینوں چیزیں جو ہیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایز کرپشن.
ٹھیک ہے. تو ایسی کرپشن آپ نے کہا کہ امریکہ میں ہوتی ہیں, تینوں قسم کی کرپشنز ہوتی ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یا آپ کے شہر میں کبھی ایسی کرپشنز ہوئیں جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟
جی ہاں بالکل. دیکھیے جہاں تک کہ فراڈ کا تعلق ہے, فراڈ میں نے نہیں دیکھا.
اچھا.
لیکن ویسٹ اور ابیوز ضرور دیکھا, اور ویسٹ اور ابیوز دیکھ کے میں نے اس کو سگنیفیکینٹلی کٹ ڈاؤن کیا. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم لوگوں نے کرپشن کم کیا, کرپشن کو ختم کیا ہم نے ان ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ کہ ہم نے فراڈ, ویسٹ یا ابیوز دیکھی. اچھا اب اس یہ جو ہوتی ہے دس از اے ڈبل ایج سورڈ, یہ آپ کی ہیلپ بھی کرتی ہے اور نقصان بھی کرتی ہے. ہیلپ اس طرح سے کرتی ہے کہ عام شہری جو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس نے یہ اچھے کام کیے, اور عام شہریوں کا نمبر زیادہ ہوتا ہے آبویسلی, تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن آبویسلی اگر آپ کسی کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی تو
ظاہر ہے
سم پیپل سیٹ, سو ان کو بات آبویسلی اچھی نہیں لگتی. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ایسی ساری چیزیں جس میں کہ سارے شہر کا فائدہ ہو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بنسبت ایک آدمی کے انڈیویجول فائدے کا. اور سوچنے کی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر سارے شہر کا فائدہ ہو رہا ہے تو انڈیویجولی بھی لوگوں کا فائدہ ہوگا.
اچھا لیکن جب آپ نے کہا کہ لوکل حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکس عائد بھی کرتی ہیں, نئے ٹیکس بھی لگا سکتی ہیں جیسا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو کیا جب آپ لوگ ٹیکس عائد کرتے ہیں یا ٹیکس بڑھاتے ہیں تو شہری اس اضافے کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں؟
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس بڑھانے سے پہلے آپ کو پبلک ہیئرنگ کرنا پڑتی ہے. 3 دفعہ آپ کو پبلک ہیئرنگ کرنا پڑتی ہے جس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس وجوہات کی بنا پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, اور ان وجوہات پبلک ہیئرنگس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے تاکہ شہری جو ہیں وہ عام شہری آ کے ایڈریس کر سکے کاؤنسل کو اور میئر کو اور اپنی اوپینین دے سکے کہ کیوں ٹیکسز بڑھائیں یا کیوں ٹیکسز نہ بڑھائے جائیں.
اچھا تو ایسا نہیں ہوتا.
میں آپ سے یہ کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے میرے ڈیورنگ مائی ٹینیور ہم نے کافی امپروومنٹ کیے چیزوں کے اور نئی چیزیں لے کے آئے, لیکن ہم نے ہر سال ٹیکس کم کیا جتنے سال میں میں میئر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فراڈ, ویسٹ اور ابیوز سب کو سختی سے پابندی کی.
اور یہاں ظاہر ہے کہ امریکہ میں قوانین کی پابندی کی جاتی ہے, اور اگر کوئی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے سزا کا اہتمام بھی بڑی باقاعدگی سے ہوتا ہے, تو اس لیے لوگ ذرا پابندی زیادہ کرتے ہیں. تو ایک بریک کا وقت ہو گیا, لیکن ہم اپنے سننے والوں کا ان کا شکریہ ادا کر دیں جو اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں. ان کے نام لے لیں, اور کلیم خانی ہیں, وی آر سنگھ ہیں, نجیب اللہ, ملک احمد, شکیل احمد, لال بادشاہ, نیاز بن الگ, گلفام بنگش, ہمایوں تاج, محمد نبی, اے ڈی وی میدی, ضیاء وفا, عثمان وفا, ڈار مقصود, رفاقت حسین, سید بشارت, پیر ارشاد, عبد الغنی قائم الدین, اسرار خان, ممتاز حسین کھر, کوئٹہ سے عمر خان عمر, غلام حیدر, پیر محمد خان اور محمد جاوید حیات, اور یہ سب لوگ ڈاکٹر ارجمن ہاشمی آپ کو بہت سراہ رہے ہیں, اور انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انہیں معلومات مل رہی ہیں کہ امریکہ میں جو میئر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, امریکہ میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, یہ بلدیاتی سسٹم ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے. تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ان کو بہت سی ایسی معلومات فراہم کر رہا ہے جو آئندہ جب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی نظام آئے گا تو ان کو اس سسٹم کے بارے میں جب آگاہی ہوگی तो हो सकता है उनकी सोच में कुछ नयापन आ सके और इससे वो कुछ इस्तेफादा कर सके। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी, जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने मेहमान बनाया है अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर पेरिस के 3 बार मुंतखब किए जाने वाले मेयर अर्जुमन हाशमी को, जो दिल के एक माहिर और मुमताज डॉक्टर हैं और इस वक्त शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन हैं। तो बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्जुमन हाशमी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो आप शहर की, बल्कि पहले ही बताइए कि आपने अपने मेयरशिप के दौर में 6 साल तक ऐसा क्या कुछ किया जिसको आप अब तक पेरिस शहर के लोग सराह रहे हैं और जिस पर आपको भी फख्र महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया शहरियों के लिए।
तो इसको मैं कई चीजों में डिवाइड करके जवाब दूंगा, ये थोड़ा सा लंबा जवाब है लेकिन मैं आपको जितना कंसाइज कर सकता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा मैं जिस चीज पर प्राउड हूँ वो ये है कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और बाय एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आई मीन कि लोगों में मैंने ये उनसर लोगों में पैदा किया कि उनको शौक हुआ कि वो काउंसिल मीटिंग्स में आए और मेयर से मिलें और अपनी जो मुश्किलात हैं वो बयान करें और उनका हल हासिल करें। उससे पहले लोग जरा कतराते थे आते हुए मीटिंग में, बिकॉज उनको लगता ये था, एक तो किसी हद तक लोग घबराते थे आते हुए, दूसरा ये था कि उनको जरा तबकाती डिफरेंस लगता था कि एक आम आदमी जाके मेयर से बात कर रहा है, तो वो चीज को मैंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया।
अच्छा,
उससे बड़ा लोगों को अच्छा लगा, उसकी वजह से ये है कि आम शहरी बहुत कंफर्टेबल फील करने लगा मेयर से आके बात करने के लिए।
अच्छा,
क्योंकि उसे पता था कि कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछगछ उस पर नहीं होगी और कोई उसके, अगर वो अच्छाई करे या बुराई करे, उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे।
बिल्कुल,
तो पहली चीज तो ये थी। अच्छा, उसके बाद में दो बाकी चीजें जो थी शहर के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पिछले तकरीबन 70-80 साल से वाटर और सुअर लाइन चेंज नहीं हुई थी, उन सब लाइनों को हमने बदला। लोगों के पास पानी की जो पुराने पोर्शन थे शहर के, उसके अंदर इतनी लाइंस पुरानी हो गई थी कि उसके अंदर कई दफा जंग आलूद पानी आने लगता था, तो उन पाइप्स को हमने चेंज किया। तो हमने तकरीबन $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करके सारे शहर के पाइप्स चेंज शुरू करना किए। फिर हमने क्या कहते हैं, नई सड़कें बनवाई। अच्छा, उसके अलावा फिर खूबसूरती के काम किए, हम लोगों ने तकरीबन 1,000 दरख्त नए फूल वाले दरख्त लगाए।
अच्छा
जी हाँ। फिर उसके अंदर फिर हेल्थ के, जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, हमने नया हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया जिसके अंदर के नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए दूध और उन चीजों का अरेंजमेंट था, जो जिन औरतों ने बच्चों, जिनके बच्चे हुए थे उनके लिए मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की करना शुरू की। और पहले थी मौजूद पहले से भी, लेकिन ये कि उनके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट लेके आए। फिर इसी तरह जब जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये किया कि एक तो उनको अकाउंटेबल करना शुरू किया, अगर कोई उनके खिलाफ कोई किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती थी तो उसको बाकायदा हम लोगों ने फॉलो किया, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट की गलती थी तो वी मेड श्योर कि उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाए। फिर उसके बाद में हमने इंडिविजुअल चीजें करना शुरू की। बाज वक्त ये होता है कि भाई मैंने ये कहा और पुलिस वाले ने ये कहा और कुछ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, तो उसमें हम लोगों ने ये किया कि पुलिस ऑफिसर्स को बॉडी कैमराज दिए और उनकी अब जो हर कॉन्वर्सेशन होता है वो, कोई भी अगर उनसे किसी जगह पे हो या कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड भी होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है।
अच्छा,
तो उसके अंदर ये बात एलिमिनेट हो गई कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो पूरे तौर पर रिकॉर्डेड रहता है।
वाह वाह, तो ये अच्छा, बड़ा अच्छा।
इसी तरह फिर हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैमरे इंस्टॉल किए जहाँ पे हमें ये शक था कि यहाँ पे कुछ क्राइम रेट ज्यादा है, उन जगहों पे कैमरे इंस्टॉल किए तो क्राइम रेट उससे गिरा। इसी तरह फिर फायर डिपार्टमेंट आता है, फायर डिपार्टमेंट में अरसे दराज से नए ट्रक्स नहीं, फायर ट्रक्स नहीं लगाए गए थे, उनके अंदर कुछ खराबियां आती जाती रहती थी, तो हमने नए फायर ट्रक्स लिए। तो इसी तरह से फिर हमने एक और जो बड़ा काम किया, उन्होंने किया कि पुराने जो घर थे, जो टैक्स जिन घरों पे टैक्स फोर क्लोजर हुए हुए थे, टैक्स फोर क्लोज प्रॉपर्टी थी, उनको हम लोगों ने ऑक्शन किया। जो घर टूटे हुए थे उनको सिटी ने क्लीन अप करवाया, या हमने नए प्रोग्राम ऐसे इंस्टीट्यूट किए सिटी की तरफ से जिसमें के लो इंटरेस्ट लोन दिया गया लोगों को ताकि वो अपने घरों को ठीक कर सकें।
लेकिन ये बताइए कि क्या मकामी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो लोगों के घर तोड़ दे? किस वजह से, क्या लीगल क्या पहलू था?
मकामी हुकूमत को पूरे तौर पर हक होता है घर तोड़ने का, अगर आपको ये लगता है कि ये सेफ एनवायरमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई अगर रह रहा हो तो छत गिर गई या कुछ हो गया तो उससे लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। उस सूरत में अगर कोई घर को डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये अनसेफ घर है तो मुकामी हुकूमत के पास पूरी अथॉरिटी होती है उस घर तोड़ने की।
अच्छा, तो उसका फिर आप उन्हीं घरों को आप रेनोवेट करवाते हैं, और रेनोवेट आपके बजट
तो
से होता है?
रेनोवेट तो हम खुद तो देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम रेनोवेट करने के लिए नहीं जा सकते, हम तोड़ने के लिए जा सकते हैं अगर हम अनसेफ समझते हैं उसे।
अच्छा,
लेकिन जब रेनोवेशन का ताल्लुक आता है तो वो फिर उस जिसका ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने ये किया कि अगर किसी के पास पैसों की कमी थी तो हमने सिटी के थ्रू और बैंक्स के थ्रू प्रोग्राम किए जिसके अंदर सिटी गारंटीड लोन होते थे, लो इंटरेस्ट लोन, ताकि वो अपने घरों को ठीक कर सके।
अच्छा,
तो ठीक करवाना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो ठीक करवा लेते थे तो फिर हम तोड़ते नहीं थे उन घरों को।
अच्छा, तो ये एक दरमियानी रास्ता आपने निकाला के बजाय इसके कि उनको तोड़ने पर जो पैसा खर्च हो वो उनको दे दिया जाए और वो लोन लेकर उसको ठीक करवा सके। बिल्कुल, तो ये आपके पास यानी जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ अमेरिका के किसी भी शहर की, उसकी जिम्मेदारी में एक तो पुलिस का शोभा आता है और फायर डिपार्टमेंट आता है, स्कूल भी आते हैं, अस्पताल भी आते हैं,
पब्लिक वर्क्स आता है।
पब्लिक वर्क्स,
लेकिन अस्पताल डिपेंड के अस्पताल कौन सा है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली नहीं आता है, अगर लोकल गवर्नमेंट की क्लिनिक्स हैं तो वो आती हैं।
अच्छा,
स्कूल नहीं आते हैं बिकॉज स्कूल का अपना बोर्ड होता है।
अच्छा, ठीक है,
तो स्कूल का बोर्ड जो है वो मेयर के अंदर नहीं आता है, वो स्कूल सुपरिंटेंडेंट के नीचे आता है।
अच्छा, ठीक है, तो ये वो शोबे हैं जिन पर आपने बहुत मेहनत की और उसके बाद अब आप इस वक्त काम कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंटल इक्तसादी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इक्तसादी तरक्की के लिए
एक चीज मैं आपको जरा रोकूंगा।
जी जी,
मैंने एक आपके वेबसाइट पे एक सवाल देखा है, कोई आशिक खासखेली साहब का सवाल।
जी जी जी, वो मिस हो गया,
तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। उनका सवाल ये था कि पाकिस्तान में लोगों के दिल में मेयर कैसा जीत, मेयर दिल कैसे जीत सकते हैं?
अच्छा,
तो मेयर कहीं का भी हो, दिल एक ही तरह जीता जाता है, और वो ये होता है कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें सिटी की तरफ से, और वो क्वालिटी ऑफ सर्विस यही होती है कि हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव करे। शहर के अंदर जो लोगों की तकलीफें हैं, मसलन पानी की कमी, खराब सड़कें, बैड ड्रेनेज सिस्टम, इन सबको इम्प्रूव करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये कि जैसे आप अगर घर वगैरह बनाते हैं तो आपको परमिट लेना होता है, तो उनका परमिट लेने का सिस्टम आसान करें और टैक्सेस कम रखें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको अपना मेयर पसंद आएगा।
हाँ, और वो आपका दिल जीत लेगा, तो दिल और खास तौर पर अगर वो मेयर जो है वो दिल का डॉक्टर भी हो तो उसके लिए तो और भी सहूलत है कि वो लोगों के दिलों को जीतने का और उनको सेहतमंद बनाने का और उनको खुश करने का हुनर भी जानता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुमन हाशमी साहब। नहीं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ वक्त और है जिसमें हम ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सवाल तो नहीं, शायद सिद्दीकी साहब ने बहुत तारीफ की है और कहा है कि हम जानते हैं कि डॉक्टर अंजुमन हाशमी जो फेसबुक पर मैं बात कर रही हूँ लाइव जहाँ हमारा प्रोग्राम जा रहा है कि बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, बड़े मशहूर हैं अपने सोशल वर्क की वजह से जो टेक्सस में वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आप साबिक सदर जनरल मुशरफ के मुआलिज भी थे, तो कुछ कुछ कहना चाहेंगे इनको, क्या कह रहे हैं?
देखिए, पेशेंट्स के बारे में बात करना जो होता है वो गलत होता है बगैर पेशेंट की इजाजत के,
ठीक?
तो इसलिए मैं इस बारे में जवाब नहीं दे
सकता। और वैसे भी डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी के पास सिर्फ परवेज, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ही नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने दिल खोल कर रख देते हैं इनके सामने और ये बाकायदा उसका एक एक कोना देखते हैं और फिर जायजा लेते हैं कि खराबी कहाँ है और उस खराबी को दूर करके उसको बिल्कुल सेहतमंद करके शहर में और जिंदगी दोबारा देकर वापस भेज देते हैं। तो डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ वो है जो आपने अचीव किया अपने 6 साल दौरे जो आपकी मेयरशिप थी, और उस पर आपको फख्र भी है और आप मुतमईन भी हैं कि आपने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई ऐसा काम आप समझते हैं जो आपने किया जो आप समझते हैं कि वो ना करते तो अच्छा होता अपने उस मेयरशिप के दौर में?
नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे कि मुझे कोई रिग्रेट्स हो। मुझे सिर्फ आई थिंक अगर आपको पूछना है कि भाई ये सारे सिलसिले में क्या रिग्रेट क्या है, अब उसकी सिर्फ एक ही रिग्रेट मैं आपको बता सकता हूँ, और वो रिग्रेट ये है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और जहाँ पे मेयर का काम करना है तो वो मेयर का काम भी अच्छी तरह करना है, डॉक्टर का काम करना है तो वो भी अच्छी तरह करना है, लेकिन 24 घंटे के आप 25 घंटे नहीं बना सकते। तो इवेंचुअली कुछ सफरिंग होती है और वो सफरिंग जो होती है वो आपकी फैमिली की जरूर सफरिंग होती है। तो अगर आप पूछें कि भाई क्या चीज किस चीज ने सफर किया, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा फैमिली ने जरूर सफर किया, क्योंकि बाकी चीजों पर इतना टाइम देना पड़ा कि जितना टाइम मैं अगर आमतौर पे अपनी वाइफ को और बच्चों को देना चाहूँ तो उसके अंदर जरूर कमी हुई।
तो अपने घर में आप मकबूल नहीं है, शहर में मकबूल हैं लेकिन अपने घर में मकबूल नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है। घर में बहुत मकबूल हूँ
अपने,
बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ी सी लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ी, लेकिन मेरी वाइफ ने उस चीज को हैंडल कर लिया। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये कि बच्चे भी मेरे बहुत खुश थे कि मैं मेयर बना, उन्होंने मेरी हेल्प भी बहुत की मेरी मेयरशिप में, मेरी वाइफ ने भी मेरी बहुत हेल्प की इलेक्शन में, सारी कैंपेन वाइफ ने भी चलाई और बच्चों ने भी चलाई। हद ये कि जो मेरा छोटा भाई ऐसा था जो 10 साल का था उसको उस तक ने हेल्प की, तो ये कोई नहीं था कि किसी को उस पर रंजिश हो, लेकिन कहने का मेरा अपनी तरफ से मकसद ये है कि थोड़ी सी ऑब्वियसली दिन में आप 24 घंटे में आप हर चीज को तो उतना टाइम नहीं दे
नहीं
सकते,
दे सकते।
तो जो आपका जो टाइम निकला वो थोड़ा सा फैमिली टाइम जरूर निकला,
बिल्कुल। और लेकिन आपसे तहरीक पाकर आपके खानदान में भी कोई मेयर बना फिर आपकी? मैं गूगल किया था तो उसमें से मालूम हुआ था कि आपकी भाभी भी गालिबन मेयर बनी।
जी, वो यहाँ पे टेक्सास में नहीं थी, वो फ्लोरिडा में थी।
अच्छा।
और अब बच्चों को मेरे बहुत इंटरेस्ट आ गया, जब से मैंने किया है तो बच्चों को जरूर इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं वो। अभी कोई मेयर नहीं बनाए वैसे, लेकिन जरूर है।
अच्छा, तो ये आपने उनकी यानी एक तरह से एक मॉडल भी बने अपने खानदान के लिए भी कि खिदमत करें, कम्युनिटी की खिदमत करें, क्योंकि इसमें
सिर्फ खानदान के लिए नहीं, देखिए ना ये तो सारे पाकिस्तानियों के लिए,
बिल्कुल।
बिकॉज आप अगर एक चीज देखें जो चीज जो पार्ट ऑफ द रीजन मैंने किया वो उसकी ये भी रीजन थी कि आप जहाँ पे देखें वहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के अमेरिकन हैं, इटालियन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, जिन्होंने के सबने बड़ा एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एक जिस चीज की आप शदीद तौर पे कमी देखेंगी वो पाकिस्तानियों ने नहीं किया था। लेकिन आई मस्ट से कि जब से मेरा हुआ है उसके बाद से आप देखिए एक नया रुझान जरूर आया है, उसके बाद बहुत सारे लोग सिटी काउंसिल के इलेक्शंस में खड़े हुए, एक और या दो लोग मेयर भी बने उसके बाद में, तो देयर इज अ चेंज।
और यही वो रास्ता है, यानी ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग बड़े रियासती इंतखाबात तक पहुंचे, बड़े फेडरल लेवल तक पहुंचे, उन वो एक बुनियादी सीढ़ी ये है कि वो लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा लेते हैं तो फिर मेन स्ट्रीम में वो आने की कोशिश उनके लिए आसान हो जाती है। तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब, एक छोटा सा ब्रेक फिर ले लेते हैं, फिर हम गुफ्तगु को समेटेंगे।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
جی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم روایت زندگی میں ہم بات کر رہی ہیں یہاں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر پیرس میں. یہ فرانس کا پیرس نہیں, یہاں کا پیرس ہے, چھوٹا سا ہے, لیکن ہمارے پاکستانی امریکی دل کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ارجمند ہاشمی صاحب, جو تین بار اس شہر کے میئر منتخب ہوئے ہیں مسلسل, اور چوتھی بار اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ لیگلی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, اور اس کے باوجود وہ شہر کی جو انتظامی کونسل ہے, اس کی اقتصادی جو کونسل ہے ترقیات کی, اس کے رکن ان کو منتخب کیا گیا اور وہ اس میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ان کی یہ باتیں جو ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت انٹرنیٹ پر براہ راست سنی جا رہی ہیں, ریڈیو پر, میڈیا میں 972 پر پاکستان میں, اور یہاں فیس بک پر بھی بہت سے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. وڈیرا اللہ بخش ہیں, اسماعیل خان ہیں, شاہد صدیقی ہیں, اور بہت سے کچھ اور لوگ بھی ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر ارجمند ہاشمی کو اتنا سراہ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ان کو اپنے پروگرام میں کسی اور انداز سے آپ کے سامنے لا سکیں. تو ڈاکٹر ارجمند ہاشمی صاحب, اب یہ بتائیے کہ اس جو آپ کی جو نیا جو شعبہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کونسل کے جو آپ رکن ہیں, اس کے تحت آپ نے اب تک کیا کچھ کیا ہے؟
دیکھیے, ابھی اکنامک ڈیولپمنٹ کاؤنسل پہ تو میں ابھی آیا ہوں, لیکن یہ کہ ہم جو ہے اس پر کاؤنسل کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی انڈسٹری کو سٹی میں اٹریکٹ کریں.
اچھا,
اور ہم لوگوں نے جو ہمارا لیٹسٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی انڈسٹری آ رہی ہے ہمارے ٹاؤن میں, جو کہ ایک نیا اسٹیل پلانٹ لگانے والی ہے تقریباً $80 million کا. تو وچ از اے بگ سکسیس اسٹوری, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپلیٹلی کلیم کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز شروع ہو چکی تھی میرے کاؤنسل پہ آنے کے, میرے اکنامک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے آنے سے پہلے, لیکن یہ کہ کمپلیٹ اب ہوئی ہے.
اچھا, تو یہ
ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر, لیکن یہ کہ یہ چیز شروع ہو چکی تھی.
اچھا, لیکن آپ نے پروگرام سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ شہر کی ترقیات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا, وہ کچھ ایسے پروجیکٹ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ لاتا ہے. وہ کچھ بتائیے کہ کیسے انویسٹمنٹ آپ لا رہے ہیں اپنے شہر کے لیے, جو شہر کے بجٹ میں اضافہ کرے گی, شہر کی آمدنی میں اضافہ کرے گی, اور شہر کو ترقی کی طرف گامزن کرے گی؟
جی ہاں, تو اکنامک ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے اس کے پاس سیلز ٹیکس جو ملتا ہے اسٹیٹ کو, اس کے پاس سے پیسے آتے ہیں.
اچھا,
ان پیسوں کو ہر سال ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں, اور انویسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یا تو زمین خریدتے ہیں یا جس طرح سے انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. اب زمین جس طرح سے ہم اٹریکٹ کرتے ہیں انڈسٹری کو, وہ یہ کرتے ہیں, مثلاً اس وقت ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے پاس تقریباً 500 acres زمین ہے. اگر ایک انڈسٹری آتی ہے جو انٹرسٹ شو کر رہی ہے پیرس میں آنے میں, تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کو فری زمین دیں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کی ٹیکسز اگلے 5, 7, 10 سال تک کے لیے معاف کریں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کو پرٹیکولر نمبر آف جابس کی بیسس پہ انسینٹیو پرووائڈ کریں گے کہ اگر جاب پہ ٹریننگ چاہیے لوگوں کو تو ہم اس کے لیے تقریباً $1,500 to $5,000 تک پر جاب پے کرتے ہیں. تو اس طرح سے کئی چیزیں کرتے ہیں بیسیکلی تاکہ ہم انڈسٹری کو اٹریکٹ کر سکیں اپنے ٹاؤن پہ.
اور جب انڈسٹری ظاہر ہے کہ کسی شہر میں لگ جاتی ہے تو اس شہر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اور آپ نے بتایا تھا کہ بہت ساری آپ انڈسٹریز لے کر آئے ہیں اپنے دور میں اپنے شہر پیرس میں, کچھ ان کا ذکر کیجیے.
جی ہاں, ہمارے شہر میں کچھ پہلے تھیں, کچھ بڑھائی گئیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈسٹری کیا ہے. ہمارے پاس کیمبل سوپ کی سب سے بڑی فیکٹری ہمارے شہر میں ہے, جو کہ ہمارے پاس تقریباً روزانہ 12 million gallon واٹر یوز کرتے ہیں, جس سے کہ ہمیں روزانہ پیسے ملتے ہیں 12 million gallon کے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرنر پائپس ہیں, جو کہ بڑی انڈسٹری ہے, جو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے پائپس بناتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس شہر میں کمبرلی کلارک ہے, کمبرلی کلارک از دا کمپنی جو کہ بناتی ہے یہ ڈائپرز پیمپرز وغیرہ جو بناتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس بوئنگ 737 کے انجن کے پارٹس بنتے ہیں کمپنی میں. پھر ایک اور کمپنی ہے جو کہ سارے یہ پیزا ہٹ اور ان وغیرہ کی جو کمپنیز ہیں ان کے کارٹنز بناتی ہیں. پھر اسی طرح ہمارے پاس ڈیزی ڈیری ہے جس کا بہت ہیوی واٹر کنزمپشن ہے. تو یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں یہ کچھ تھیں پہلے, کچھ بعد میں آئیں, اور کچھ کے اندر یہ تھا مثلاً ہمارے پاس پہلے کیمبل سوپ کے اندر تقریباً 700 job تھے, تو ہم نے ان کو انسینٹیوز کچھ پرووائڈ کیے, اس کے بعد میں نمبر آف جابز بڑھا کے 800 or 850 نمبر ہوئے.
اچھا,
اور دوسری چیز جو سوچنے کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ $1 کا فائدہ ہوتا ہے سٹی کے اندر, तो वो 7 times मल्टीप्लाई होता है. मसलन ये कि अगर मैंने $1 सिटी के अंदर खर्च किया है तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो तकरीबन 7 गुना होता है.
अच्छा
जी हाँ. तो इसीलिए हम जो ये इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि हमने 1,500 या 5,000 जितने भी डॉलर दिए इनिशियली इंडस्ट्री में खर्च करने के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो आप ये सोचेंगे वो सिर्फ हमने तो जॉब ट्रेनिंग तो दी, लेकिन उस जॉब की ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि एक आदमी इम्प्लॉय हुआ उस जॉब पे. अब उस जॉब के ऊपर अगर इम्प्लॉय हुआ उसकी 35,000-40,000 तनख्वाह है तो उस पर टैक्सेस मिले. फिर उस आदमी ने जब टैक्सेस दी उसको तनख्वाह मिलना शुरू हुई तो उसने जाके घर खरीदा. फिर उसने जब घर खरीदा तो हमने उससे घर से टैक्सेस कलेक्ट किए. जब उसने घर से टैक्सेस पे किए तो उसने पानी का इस्तेमाल किया तो पानी के पैसे हमें मिले. जब पानी इस्तेमाल हुआ तो सुअर यूज हुआ, जब सुअर यूज हुआ तो सुअर के पैसे मिले हमें. तो ये जो है 7 times मल्टीप्लाई होता है. होता है सिटी में वो 7 times मल्टीप्लाई होता है. तो इसलिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर किसी कंपनी को या कंपनी आना चाहे तो उसको हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं.
बिल्कुल बिल्कुल. और ये एक तरीका है शहर की हालत को बेहतर बनाने का, शहर में आमदनी का एक मौसर जरिया लाने का कि वहाँ इन्वेस्टमेंट लाएं. और इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि आप उनको फैसिलिटेट ना करें और उनको आप उनको इंसेंटिव ना दें. तो आप उनको जो इंसेंटिव दे रहे हैं उससे 7 गुना ज्यादा आप उनसे समझ लें फायदा ले लेते हैं. अच्छा, ये आजकल पाकिस्तान में जो नई पीटीआई की हुकूमत है उसे पाकिस्तानी अमरीकियों से बहुत ज्यादा तवक्कोआत वाबस्ता हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तानी जो अमरीकी बाहर हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं, अगर वो नई हुकूमत की किसी भी अंदाज में मदद करना चाहें तो वो क्या तरीके हो सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़ा तरीका तो ये होता है कि आप उनको इंडस्ट्री लगा के हेल्प करें, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री लगा के हेल्प करें. कि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि सिर्फ लोगों को पैसे दे दिए जाए या उनको ये गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे कमाएं. जो वो चीज फैसिलिटेट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वहाँ के वो माहौल ऐसे बनाएं जिसमें कि यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे फाइनेंशियली अच्छे हालात में हैं, वो वापस जाके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वापस नहीं जाना चाहता रहने के लिए. कुछ लोग यहीं पे रहना चाहते हैं, वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं पाकिस्तान में.
तो आप पाकिस्तान के बलदियाती निज़ाम के लिए जल्दी से कोई सजेशन दीजिए कि अब वो नया निज़ाम जो ला रहे हैं उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो शामिल करें कि वो कामयाबी से आगे चल सके ये सिस्टम उनका.
जी हाँ, देखिए सबसे ज्यादा बड़ी तो मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इजी एक्सेसिबिलिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ करप्शन. अगर आप ये दो चीजें निकाल देंगे और आप जो लोग काम करने वाले आपके लोग हैं इलेक्टेड लोग पर्टिकुलरली, आप ऐसे लोगों को रखें जो कि सेल्फिश चीजें ना कर रहे हो. वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आदमी सेल्फिश नहीं होगा और बाकी सब लोगों की अच्छाई चाहेगा, अपनी भी अच्छाई चाहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर सारा मजमूई फायदे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबका फायदा होता है.
सबका फायदा होगा. और खासतौर पर जो सबसे बड़ा मसला है जैसे कराची जैसे बड़े शहर में जिससे आपका भी ताल्लुक है, पानी के सिस्टम को ठीक करने के लिए मुख्तसरन कोई 1 मिनट में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना पानी की फरहमी का सिस्टम ठीक करें?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो है वो ये है कि फीजिबिलिटी करें कि पानी का यूसेज है कितना. आज तक कभी यही नहीं डिटरमिन किया गया है क्योंकि पानी की लाइन ही नहीं, आधे शहर में पानी की लाइन ही नहीं है. तो जब तक कि आप ये डिटरमिन नहीं करेंगे कि क्या पॉपुलेशन है और इनका कितना यूसेज है, उस वक्त तक आप कोई प्लान नहीं बना सकते. जब आप एक फीजिबिलिटी बना लीजिए कि इतना लोग रहते हैं, इतने घर हैं, इतना पानी का यूसेज है पर पर्सन, उसके बाद में फिर जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप उसका एक बाकायदा 1-year plan, 2-year plan, 10-year plan बनाएं. और फिर उसके बाद में आप ये तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आप सारे कराची को तोड़ दें और नई पाइप बिछा देंगे, मुमकिन नहीं है. लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप 10-year प्लान बनाएं तो आज नाजमाबाद में लाइंस लग गई, कल जैकब कहीं और जैकब लाइंस में लाइंस लग गई, कहीं परसों आपने क्लिफ्टन में लगा दी,
तो मरहलावार और बगैर करप्शन के और उसमें खुलूस नियत से ये काम शुरू करें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज हमने मेहमान बनाया था अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर पेरिस के पहले और अमरीकी तारीख में पहली बार 3 मुसलसल मुद्दत के लिए मेयर के मनसब पर फायज रहने वाले एक पाकिस्तानी अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी को, और जो इस वक्त उसकी इकोनॉमिक तरक्याती काउंसिल के रुकन भी हैं। उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए हम आज का प्रोग्राम समेटते हैं। हमारी प्रोड्यूसर थी सादिया असद, यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का शहर कराची इन दिनों सफाई सुथराई की संगीन सूरत हाल से दो चार है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में रोजाना 16,000 टन कचरा पैदा होता है। ताहम सरकारी सतह पर आदाद शुमार कहते हैं कि रोजाना पैदा होने वाला कचरा 12,000 टन है, जिसमें से निस्फ यानी 6,000 टन कचरा ठिकाने लगाने का इंतजाम है। यूं हर रोज 6,000 टन कचरे का शहर में इजाफा हो जाता है। शहर में सफाई सुथराई की जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों से लेकर सिंध हुकूमत के मातहत अदारे वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दी गई है, जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर कचरे की सफाई करती है। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद अहमद मेंगरियो का कहना है कि शहर की 4 म्यूनिसिपल काउंसिल इनके साथ ताउन कर रही हैं। वो कहते हैं
4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ है, चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने काम, तो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इस पे हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं इसको, तो अब काफी हद तक तो चीजें बेहतर हो रही हैं। पिछला बैकलॉग हमने काफी निकलवाया है जो पहले से पड़ा हुआ था कई सालों से, एंड वी आर लिफ्टिंग दी जो गार्बेज व्हिच वाज ऑलरेडी एक्युमुलेटेड, एंड फ्रेश गार्बेज कलेक्शन का एक सिस्टम बनाया है जो साइंटिफिक तरीके से वो डोर टू डोर कलेक्शन करके GTS पे आते हैं और फर्दर उसको हम वही शिफ्ट देम टू द लैंडफिल साइट, बट स्टिल देयर आर सम एरियाज जहां पे अभी कवरेज का थोड़ा सा इशू है, तो इंशाल्लाह वो भी हम देख रहे हैं कि विद इन फ्यू डेज वो दैट शुड आल्सो बी कंप्लीट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है, ये उसकी अथॉरिटी में ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक एग्रीमेंट के तहत इसका हिस्सा बनती है, तो अब 4 डिस्ट्रिक्ट तो हमारा हिस्सा बन गई हैं, अब 2 डिस्ट्रिक्ट मजीद हैं जिनको अभी हमें बनाना है, तो उसके लिए वो प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दिया है हमने और इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स वो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएंगे, तो इस हिसाब से सवाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स को छोड़ के बाकी सारा जो एरिया है वो इंशाल्लाह वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आ जाएगा, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी जो आप कह रहे हैं वो यकीन आएगी, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट सारे इंटर मिक्सड हैं, पता ही नहीं चलता कि सेंटर शुरू हो जाता है फिर कुरंगी शुरू हो जाता है, तो कहीं पे भी अगर कचरा नजर आ जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये पूरी कराची में है, तो सम एरियाज आर वेरी गुड, लेकिन वो एरियाज जो अभी हमने कवर नहीं की या जहाँ तक हमारा ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ या हमने टेक ओवर नहीं की, तो वहाँ पे यकीन कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, इस वजह से भी ये सूरत हाल नजर आती है, लेकिन इंशाल्लाह ये 2-3 महीने में ये ओवरऑल पिक्चर जो है क्लियर आ जाएगी आपको।
कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोहरा का कहना है कि शहर में सफाई सुथराई का संगीन मसला शहर के सियासी बुनियादों पर तकसीम की वजह से है और सूरतहाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब वफाकी हुकूमत ही मुदाखलत करके इसे बेहतर बना सकती है। अरशद वोहरा कहते हैं
12,000 टन कचरा जो है कराची में जनरेट होता है। अच्छा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, कुछ कंट्रोलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो ये सारा जो है ना मतलब ये कि एक ऐसा कंफ्यूज स्टेटस है, यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो गई है, अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है और सबका सियासत में इंटरेस्ट है, नोबडी वांट्स टू सर्व, और एंड ऑफ द डे आप आज ये बात लिख के रख लें कि फेडरल गवर्नमेंट पर बात आएगी और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वन टाइम इसके लिए एड देगी, उसमें लोग पैसा बनाएंगे, यही होगा और रिजल्ट जो है इट विल टेक टाइम, सिंसियरिटी से अगर काम किया जाए तो इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कपल ऑफ मंथ्स। शहर इसका जो है ना पोलिटिकली डिवाइडेड है, मतलब 3-2 जो है वो पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 जो है वो NKM के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस लिहाज से पोलिटिकली शहर डिवाइडेड है और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, अदरवाइज ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें लोगों ने अपनी इसको जो है ना मतलब ये कि पोलिटिकल तरजीहात हैं और पोलिटिकल इशूज बना रहे हैं, अगर चाहें तो मिल बैठ के 2 महीने مہینے کا یہ کام ہے, دو مہینے میں چیزیں ریزالو ہو سکتی.
غیر جانبدار تجزیہ کار معروف صحافی محمد انور کہتے ہیں کہ بلدیاتی خدمات کی ادائیگی کے لیے جو نظام قائم کیا گیا ہے وہ نہایت کنفیوز ہے, جس کی وجہ سے شہری سہولیات سنگین صورتحال سے دوچار ہے. ان کا کہنا ہے,
اس شہر میں روزانہ جو 16,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے, اگر 12,000 ٹن بھی مان لے ہم تو 6,000 ٹن تقریباً اٹھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ روزانہ اچھا خاصا کچرا شہر کی سڑکوں, گلیوں, ندی نالوں میں جمع ہو جاتا ہے. پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اسی طرح جو پرانا طریقہ تھا, بس صرف وہ انہوں نے کانٹریکٹر چینج کر دیا, وہ کانٹریکٹر چائنا کی کمپنی ہے, انہوں نے اپنے لوکل مقامی لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, وہ اسی طرح کچرا اٹھاتے, کوئی نیا جدید طریقہ نہیں ہے.
پاکستان میں نئی قائم ہونے والی حکومت کو اہل کراچی کا منڈیٹ بھی حاصل ہے. حکمراں جماعت بھی شہر کے اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کی خواہش مند نظر آتی ہے. اگر صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے درمیان شہر کی ترقی کے لیے ہم آہنگی پیدا نہ ہوئی تو توقع کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے.